તારીખ 1/1/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 693 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 66
ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले को पढ़ने के स्थान कैसे होते हैं वो दिखाया, क्रिया मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले को किस प्रकार से नुकसान होता है वो भी दिखाया, और सत्पुरुष की पहचान करके भक्ति मार्ग को आश्रय करने का उपदेश दिया है। यहाँ पत्र लिखने का कृपालु देव का प्रयोजन सत्पुरुष की भक्ति में लगाने का है, किंतु किसी भी प्रकार के धार्मिक साधन में अनुचितता आती है। इसलिए होता है, इसलिए ओक्षमना के कारण से ऐसा होता है, पहचान नहीं होती है, देव शास्त्र गुरु सत्पुरुष की पहचान नहीं होती है, तो बिना ओखण ओक्षमना से राग में साधना का भ्रम हो सकता है, वो अनुचितता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से समझ की दिशा में प्रवृत्ति करने का बंद हो जाता है। फिर कोई क्या ऐसी प्रवृत्ति करने वाला कि हमको शास्त्र की माथापच्ची में नहीं जाना है, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमको कोई प्रवचन नहीं सुनना है, शास्त्र नहीं पढ़ना है, हमको तो भक्ति करना है, हम तो भक्ति करेंगे, क्योंकि कृपालु देव ने भक्ति साधन बताया है, तो वो समझदारी की बात नहीं है। उसमें उस प्रकार की प्रवृत्ति से समझ की दिशा में प्रवृत्ति करने का बंद हो जाता है, और इस कारण से आत्मकल्याण की जो वितराग भाव स्वरूप है उसको समझना भी कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्यों? कि राग राग में साधन माना तो वितरागता से विरुद्ध गए, तो वितरागता के विषय में जो समझ करनी चाहिए प्रथम, वो ही नहीं करेंगे। वो ये भक्ति में सर्वस्व आ गया हमारा, तो हम जो भक्ति करते हैं उसमें ही सर्वस्व आ गया, वो वितरागता की बात को दूर से ही निषेध करेगा, ये बात हो जाएगी। ऐसा है कि उनके उपदेश को प्रत्यक्षवत लेना तो अच्छा है। क्या? जो उपदेश कृपालु देव ने दिया हमको, तो जैसे हमारे सामने बैठे हैं और हम कोई उपदेश दे रहे हैं, ऐसा लेना तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी परोक्षता में हमको विरह की वेदना आनी चाहिए। ऐसा हम मानकर संतुष्ट नहीं हो जाए कि वो प्रत्यक्ष है, भले ही परोक्ष हो लेकिन हम तो प्रत्यक्ष मानेंगे। तो इनके इनका जो वियोग है, इनका जो विरह है, वो हमको सालेगा नहीं, उनकी वेदना आएगी नहीं, और भविष्य में इनका जो विरह वेदना से संयोग होना चाहिए वो होगा नहीं आगे के भाव में। और ये नुकसान, ये एक प्रकार का ऐसा होगा दूसरे प्रकार का नुकसान ऐसा होगा कि कोई प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिलेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसका स्वीकार हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हाँ, वो राग है, वो भक्ति का राग हो गया। भक्ति का, भक्ति ज्ञान स्वरूप होनी चाहिए, राग स्वरूप होनी नहीं चाहिए। इसलिए जो वितराग भाव है उसको समझना कठिन पड़ता है, क्योंकि राग की पकड़ ज्यादा हो गई तो वितराग भाव को समझना ही कठिन हो जाएगा। जी, भक्ति ज्ञान ज्ञान रूप होने चाहिए। हाँ, अभेद भाव से भक्ति करना, अभेद अभिन्न भाव से भक्ति करना, एक भाव से भक्ति करना, उसको पराभक्ति कहने में आता है। और निष्काम भाव से भक्ति करना, कैसे? निष्काम भाव से वो निर्मलता ले आती है। हाँ, भक्ति यथार्थ जब होती है या निष्काम रूप से जब होती है तो परिणाम में मुमुक्षु को निर्मलता आए बिना रहेगी नहीं। हम भक्ति करते हैं और हमको निर्मलता नहीं आती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति में यथार्थता नहीं है, अयथार्थता है। जो अयथार्थता होती है तो निर्मलता नहीं आएगी। वो कैसे, थोड़ा और गहराई में जाएं तो, कि हम भक्ति तो करते हैं, कृपा गुरुदेव की करें या गुरुदेव की करें, किसी भी जिसका भी हमें उपकार हो, उपकार लगता हो, जिसका उपदेश का, किसी भी ज्ञानी की हम नाम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको निर्मलता नहीं आती है, इसका क्या कारण है? आनी तो चाहिए, ये इसका फल है। तो भक्ति यथार्थ रूप में होती है, वो कैसे? क्या हम इनकी कुछ बातें तो मानते हैं और इनकी कुछ बातें हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो बातों का हम स्वीकार नहीं करते हैं उसमें उनकी अभक्ति भी होती है साथ साथ। क्या भक्ति भी करते हैं और अभक्ति भी करते हैं तो हमारी जो भक्ति है उसकी धुलाई हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, ऐसा बन जाता है। इसलिए भक्ति करना तो पूरी पूरी करना, अधूरी मत करना, वरना कहीं अभक्ति करेंगे, किसी कोई बात को नहीं मानेंगे, कोई बात को मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अभक्ति का परिणाम हो जाएगा वहां।
इसके अलावा और क्या गड़बड़
है? ये मुख्य गड़बड़ है, फिर सब गड़बड़ इसके पीछे चलेगी, जो भी परंपरा चलेगी वो इसके पीछे चलेगी। कभी हम विरोध में भी आ जाएंगे, आज नहीं तो कल विरोध में भी आ जाएंगे, वो बात बनेगी, हमको ख्याल नहीं रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, हो सकता भी है, ऐसी बात है। ओग भक्ति से उनके साथ निष्कामता होती है तो निर्मलता थोड़ी बहुत आती है। हाँ, मैंने पूरी पूरी जो पहचान के बात जो आती है इतनी तो नहीं आती है, इसलिए थोड़ी बहुत आती है, वो बात है। किसी जीव को पहचान नहीं हो फिर भी निष्काम भाव से बहुत बहुत अत्यंत अत्यंत भक्ति भी हो सकती है, ऐसे भी भक्त होते हैं कि पहचान नहीं हुई हो लेकिन अत्यंत भक्ति हो गई, भोग संज्ञा में भी और निष्काम भाव से, कोई अपेक्षा नहीं, बस इनके प्रति बस भक्ति भाव ही बहता रहे ऐसे ऐसे ही कोई परिस्थितियों के भक्ति भाव बहता ही रहे तो थोड़ी बहुत निर्मलता आती है वहां भी,
निर्मलता के फल में पहचानी हो जाएगी,
हो सकता है कि हो जाए भी, हो सकता है क्योंकि निर्मलता का कार्य ही पहचान करने का है, तो हो भी सकती है। तो इसलिए भक्ति करना तो अच्छा ही है, इसलिए भक्ति करना तो अच्छा ही है। भोग संज्ञा में भी कहीं अभक्ति नहीं हो जाए इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए, वो बात है। इसलिए कृपालु देव ने तो इस पत्र में भक्ति में होने वाली अयथार्थता की चर्चा ही नहीं की है। ये तो जो प्रश्न उठाए तीनों विषय में तो उसको पूरा छंछेड़ करने के लिए थोड़ी बात इस आत्म जागृति में ली है, थोड़ी सावधानी आ जाए और हमको यथार्थता नहीं हो इस कारण से।
अगर हम क्रम से चलते हैं और हमको संगम में भक्ति होती है तो वो तो नियम से क्रम से अगर हम चलेंगे तो वो तो पहचान में परिवर्तित हो ही जाएगी,
हो ही जाएगी। उसमें क्या होता है कि क्रम में तो वो बात होती ही है कि हमें आत्मज्ञान चाहिए, आत्मकल्याण का मुख्य उपाय तो आत्मज्ञान है, तो आत्मज्ञानी पुरुष सत्पुरुष है वो भी हमें चाहिए, इसके बिना तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी उतना तो समझ में आ ही जाता है। तो उसका पहचान करने का भी सहज जिज्ञासा हो ही जाएगी, उसमें ओग संज्ञा ज़्यादा नहीं रहेगी। क्रम में आने वाले को ओग संज्ञा का चांसेस बहुत कम है।
फिर तो हम ऐसे निश्चय करें कि हमको तो क्रम में आना है, किसी प्रकार से कम क्रम में आना है,
ठीक है,
और भक्ति करना है चाहे पहचान वाला हो या नहीं हो, संगा वाला हो, इसको क्या देखना है मेरे को, हमको तो क्रम में चलना है।
ठीक है, अच्छी बात है, हम तो हमारे लिए तो वो बात अच्छी है, तो पहचान भी हो जाएगी हमको तो, ठीक है।
कुछ दिन ज्यादा लंबा जाए, कुछ ज्यादा दिन अगर ठहरे लंबा जाए
तो जो प्राप्त निर्मलता वापस, कभी कभी ऐसा बनता है कि वहां निष्कामता नहीं होती है, कोई सकामता होती है, ऐसा होने में क्या प्रश्न है मैं दोहराता हूं कि कोई मुमुक्षु ऐसा भी है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, इनकी भक्ति सेवा बहुत करते हैं उप संज्ञा से, और कुछ न कुछ सकामता उसमें रह जाती है, तो सकामता मैंने कुछ अपेक्षा, जैसे कि हमको सेवा का अधिकार मिला, ये सकामता है, हम सेवा करते हैं उतनी दूसरी कोई नहीं, दूसरा नहीं कर सकते हैं, वो सकामता है। और समीपता रहने से जो दूसरे मुमुक्षु के प्रति उदारता आनी चाहिए इसके बजाय संकुचितपना आ जाता है, तो बात थोड़ी बिगड़ जाती है। उसमें क्या करते हैं कि दूसरों से अनादर पुरस्कार ऐसे प्रकार के परिणाम होने लगते हैं, क्योंकि हम तो समीप रहे हैं, दूसरे उतने समीप नहीं हैं, और हम सेवा करते हैं उतने दूसरे लोग सेवा नहीं करते हैं, इस प्रकार के जो परिणाम है वो सकाम परिणाम है। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो ऐसा होता है कि हम भक्ति करेंगे तो इसका फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमको, इसका फायदा तो होगा, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उनको ऐसा नहीं होता है, जो सकामपणे से करते हैं उनको ओग संज्ञा में दर्शन मोह तीव्र हो जाता है, जो पहले मंद हुआ था वो बाद में तीव्र हो जाएगा।
अभी जो आपने प्रकार बताया, अभी जो आपने प्रकार बताया सकामता का, तो विपर्यास है, विपर्यास है, तो पकड़ में आ सकता
है, उनको पकड़ने में नहीं आता है जिनको ये विपर्यास होता है वो नहीं पकड़ सकता, ऐसा होता है।
थोड़ा बुद्धि में स्पष्टता भी मिली
है,
होती नहीं है, ये तो चर्चा होती है सत्संग में तो पता चलता है, बाकी करने वाले को पता नहीं चलता है। उनको तो ये लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं सेवा करता हूँ तो मैं भी कुछ हूँ सेवा करने वाला, वो बात आ जाती है बीच में।
निष्काम भक्ति में तो खाली आत्म कल्याण आएगा।
निष्काम भक्ति में तो बस हमको तो ये हमारे लिए परमेश्वर है, हमको तो भक्ति कर, हम कुछ समझते नहीं, हमको भक्ति करना है, ये हमारे भगवान है।
आत्म कल्याण का,
हाँ तो आत्म कल्याण तो वो तो वैसे ही हो, वो तो वो परिणाम से आत्म कल्याण हो ही जाएगा, वो उनको कोई खास मुख्य करने का सवाल नहीं रहता है, भक्ति की मुख्यता में वो सवाल नहीं रहता है, ये बात बन जाता है।
भक्ति का फल ही ज्ञान की निर्भरता है
जी,
भक्ति का फल ही ज्ञान की निर्भरता
है। हाँ, भक्ति के फल में ज्ञान निर्मल हो जाता है, ये जब यथार्थ भक्ति होती है तो ज्ञान निर्मल हो ही जाता है। अगर भक्ति करने पर भी ज्ञान निर्मल नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि भक्ति यथार्थ नहीं है, कहीं गड़बड़ है ही।
कुंती के सौ पुत्र,
हाँ,
कुंती के सौ पुत्र, कश्यप की माँ कुंती,
हाँ,
कुंती के सौ पुत्र,
हाँ,
सबकी माँ कुंती,
हाँ, सबकी माँ कुंती, तो ठीक है,
यही बात हो रही है।
ओग संज्ञाथी आविल जीव परिचयमां रहीने प्रतीति थई होय एवं लागे तो प्रतीति अने पहचान में क्या फर्क है? पहचान पूर्वक ही प्रतीति होती है, जो प्रतीति होती है वो पहचान पूर्वक होती है, तो वो प्रतीति और पहचान हुए उसका क्या लक्षण, ये प्रश्न हो सकता है। तो उसमें कृपालु देव का 194 नंबर का पत्र है, सम्यक प्रतीति और क्या शब्द लिखा है, अचल प्रेम, ये परिस्थिति पैदा हो जाती है कि किसी भी हालत में वो विचलित नहीं होता अपने प्रेम से। समझ में नहीं आ रहा है जरा, वो उसका प्रेम का दृष्टांत है। रामचंद्र जी के प्रति प्रेम था, उतना प्रेम था, उतना प्रेम था कि अपने जो बेर हैं, बोर बोर बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में बेर बोलते हैं ना, वो चक चक के खिलाती थी, गुजराती थी, मेरा झूठा खा रहे हैं, वो भूल जाती थी, वो चक चक के खिलाती थी उसको, पागल हो गई, भूल गई कि मैं झूठा खिला रहे हूँ, उतना प्रेम था कि प्रेम में वो पागल हो गई थी, ऐसा कहने का अभिप्राय है। रामचंद्र जी तो प्रेम के भूखे थे, बेर के भूखे नहीं थे, वो तो अयोध्या के राजा थे, तो कोई बेर के तो थोड़े भूखे थे, वो तो प्रेम के भूखे थे, तो उसको प्रेम मिलने लगा तो ठीक है, उनको तो अच्छी बात है।
एक के पास वर्चस्व है, वह झूठा है कि नहीं है, इसका खेल
सवाल ही पैदा नहीं होता।
मेरा प्रश्न तो ये है,
ये प्रेम भी थोड़ा पागलपन है, प्रेम में तो पागलपन आता ही है क्या, अरे ये पागलपन पण मानवा जेवू छे। सबरी भी बनना चाहिए और रामचंद्र जी भी बनना चाहिए, जब भी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। मीराबाई का है, मीराबाई का, मीराबाई का बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। जो गोस्वामी थे वो बड़े कृष्ण श्री कृष्ण के जाने माने भक्त थे, तो मीराबाई को उसने कहा, अरे मेरे भगवान के कोई बड़े भक्त हो तो उनका मुझे भी दर्शन करना चाहिए, क्यों कि भक्त तो भक्त का भी दासानुदास होता है, उनको ये नहीं है कि मैं भी भक्त हूँ, वो भी भक्त है तो मैं भी भक्त हूँ, ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे भक्त का दासानुदास रूप अपने को अनुभव करता है। वो भी वृंदावन गई और कहलवाया कि आपका दर्शन के लिए मैं कब आ सकती हूँ, तो बोले कि मैं तो स्त्री का मुख देखता नहीं हूँ, कोई स्त्री को मैं नहीं देखता, इसलिए मेरे दर्शन के लिए मत आना। तो उन्हें कहलवाया कि अच्छा, वृंदावन में रह कर के भी आप पुरुष भाव में रहते हैं क्या? हाँ, हम तो ये सोचते थे कि वृंदावन में तो श्री कृष्ण की सब गोपियां ही गोपियां रहती है, सब दासी के रूप में भक्ति करते हैं, आप पुरुष के रूप में भक्ति करते हैं, वो जानकर तो हमको तो आश्चर्य हुआ। मैं भी पुरुष का तो मुख नहीं देखती। उन्होंने भी वो कहलवाया कि मैं भी पुरुष का मुख नहीं देखती। तो गोस्वामी का जो अहम भाव था, पुरुषपने का जो अहम भाव था, वो छूट गया, वो मीराबाई के चरण में आ पड़े। ये भक्ति का तो कोई प्रकार ही अलग होता है।
ये लल्लू जी महाराज दासी लिखते थे।
हाँ, लल्लू जी महाराज अपने को दासी लिखते थे, दास नहीं लिखते थे। कैसा लिखा है देखो, भक्ति कुरतु करते हुए स्वरूप पहचान की तीव्र अपेक्षा सकाम है क्या? वो स्वरूप, वो भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो ये प्रकार के विकल्प नहीं आते, अभिप्राय में कुछ भी हो। ये जो स्वरूप पहचान करने का विषय हो, अभिप्राय का होता है, प्रवृत्ति में तो भक्ति में लीनता बहुत आती है। एक चीज ऐसी है कि जिसमें वो भाव विभोर हुआ जाता है तो वहां दूसरा विकल्प खड़ा नहीं होता है। हाँ, उसमें सकामता है, वो भी सकामता है। या तो सकामता ऐसी भी होती है, थोड़ा और ले लें तो, कि हम आपकी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि आपसे हमें ज्ञान मिलेगा। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम भक्ति करते हैं, वो भी सकामता है। ज्ञानी के पास कृपालु देव ने इसलिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन, इतना सुंदर बातें की है कि ज्ञानी के पास ज्ञान की मांग मत करो, भक्ति की मांग करो, हमको भक्ति दो। और परमेश्वर को, ईश्वर कर्ता को उलाना ओलंबा दिया है कि अरे परमेश्वर, तू मुक्ति देने में तो उदार है, लेकिन भक्ति देने में क्यों लोभी हो, कृपण क्यों हो, भक्ति दे दो हमको, हमको तो भक्ति चाहिए, उसमें लोभ क्यों करते हो? क्या बोले कि मुक्ति में तो उदार हो, मुक्ति तो दे देते हो, लेकिन भक्ति क्यों नहीं देते हो? मतलब क्या कि बिना भक्ति मुक्ति आने वाली है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें बहुत सुंदर शैली से मुखी है, शैली देखो उनकी, मुक्ति और भक्ति के कितना कंपैरिजन लिया कि अरे परमेश्वर, भक्ति देने में तुम उदार होता है और भक्ति देने में तुम कृपण रहता है, ये क्या तेरी विचित्रता है। वो भी सकाम भक्ति होगी, इसलिए 269 में उन्होंने लिखा कि मोक्ष से भी हमें संत चरण की समीपता अधिक प्रिय है। 269 पत्र है, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग मिला, सत्पुरुष का चरण सानिध्य मिला तो हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बात कैसी होगी जब इस प्रकार के परिणाम आते हैं, तो वो बात कैसी होगी, एक अनुभव का विषय बनता है, चर्चा का विषय नहीं बन सकता, ये अनुभव का विषय बनता है। ऐसी ऐसी बातें कही है उन्होंने।
भक्ति करने के पीछे ज्ञान की चाहना होती है, भक्ति करने के पीछे सामने वाले के गुण दब जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है जिसकी भक्ति हम करते हैं,
गुण दब जाते हैं,
गुण का वैल्यूएशन नहीं आता है तो राग हो जाता
है। ठीक है, तो गड़बड़ होगी होगी, सकामता में तो गड़बड़ होगी ही होगी। कौन नहीं, अभिप्राय रह जाए, पर भक्ति में वो लीन थी जाए कि अभिप्राय गौण थी जाए। एक स्टेज है, हिरेंद्रमय, ये एक ऐसा स्टेज आता है कि जब कोई जीव आत्म कल्याण के लिए सत्पुरुष को खोजता है और खोजते खोजते शायद मिल भी जाता है, फिर उनको वो मिलने पर जो परिस्थिति होती है उसमें उसका जो अभिप्राय एक दफे तो गौण हो जाता है कि मुझे सर्वस्व मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे एक परिणाम हो जाते हैं जिसको कहते हैं कि सत्पुरुष की भक्ति में लीन होना। 172, सत्पुरुष की भक्ति में लीन होना। लीन होना मैंने क्या कि फिर दूसरी बात रहती नहीं है, उस वक्त तो नहीं रहती है, अभिप्राय अभिप्राय की जगह दब गया थोड़ा, ये बात हो जाती है। हाँ, तब कितना शब्द लिया, 394 है ना, देखो वो मन महिला नो वाला उपरे बीजा काम करंतरे तेम श्रुत धर्मे मन दृढ़ रहे ज्ञान क्षेपक वंतरे। तो संसार में जो है स्त्री का अपने पति के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम का एक दृष्टांत लेकर के धर्मी जीव का सुना हुआ उपदेश, उस उपदेश के प्रति कैसे परिणाम रहते हैं उसका एक कृपालु देव ने बहुत सुंदर बात लिखा है। तीन सौ पंचानवे तो नहीं, दोनों में एक ही विषय चला है, 394 में भी और 395। हाँ, जो भक्ति निष्काम ऐसी अल्प भी भक्ति जीव को उत्पन्न होती है तो बहुत से दोष से निवृत्त होने का कारण बनता है। हाँ, अल्प भी निष्काम भक्ति होती है तो बहुत दोष के से निवृत्त होने का कारण बनता है। फर्स्ट पैरा में, हाँ, परंतु सिद्धांतकार कहते हैं, वो काव्य का जो सिद्धांत जो है वो है कि यह स्नेह के कारण से, यह स्नेह का कारण तो संसार प्रत्ययी है, जो महिला का प्रेम होता है वो तो संसार प्रत्ययी होता है, परंतु यहां तो असंसार प्रत्ययी प्रेम की बात चल रही है, इसके लिए कहना है, इसलिए इस प्रकार का स्नेह लीनपणे प्रेमपणे स्मरणपणे ध्यानपणे इच्छापणे जहाँ करने योग्य है वहाँ वह स्नेह असंसार परिणाम को प्राप्त होता है, यह कहते हैं असंसार परिणाम को प्राप्त होता है। इतने परिणाम लिए हैं, एक स्नेह के विशेषण कितना लिया है, लीन हो जाता है मां, जैसे उसके सर्वस्व मिल गया मुझे, ऐसी बात होती है। ये सब पत्र बहुत गहराई से पढ़ने योग्य है। अब जो हमारा प्रकरण चल रहा था कि यहाँ ओघ भक्ति में राग रग तीव्र होने से वीतराग मार्ग से दूर होने का बन जाता है और वीतरागता के उपदेशक ज्ञानी और उसके मार्ग प्रति जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या, ये सब ज्ञान की चर्चा माथा पच्ची सी क्या बात है, हमको ऐसा कोई नहीं चाहिए, हमको तो हमको हमारी भक्ति करने दो। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति विकट हो जाती है। मुमुक्षु की भूमिका में तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ क्रिया और यथार्थ भक्ति का मेल होता है, सुमेल होता है, तो ही ऐसी यथार्थता आगे बढ़कर के सम्यक्त्व में परिणमित होती है। यहाँ तीनों की यथार्थता किस प्रकार की है कि यहाँ आत्मलक्षी स्वाध्याय द्वारा तत्व विचार रूप ज्ञान वह ज्ञान मार्ग है, ज्ञान जिसमें यथार्थ समझ का अमलीकरण अर्थात उस रूप क्रिया होने से भाव भाषण की उत्पत्ति होती है। फिर से आत्मलक्षी स्वाध्याय के द्वारा तत्व विचार रूप ज्ञान वो ज्ञान की प्रवृत्ति यथार्थ ज्ञान की प्रवृत्ति है, और यथार्थ समझ को प्रयोग में लेना वो इसका अमलीकरण है। एक वो एक स्टेज होता है समझ में, वो स्टेज ऑफ डिसीजन कहते हैं अपन, दूसरा स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन, जो समझ में आए उसको एग्जीक्यूट करे, उसका अमलीकरण करे, उसको क्रिया कहते हैं, और उससे भाव भाषण की उत्पत्ति होती है प्रयोग के दौरान। और यथार्थ समझ होने से देव गुरु और सत्पुरुष का स्वरूप पहचान में आता है, और ऐसे मोक्ष के दातार के प्रति परम भक्ति उत्पन्न होती है, परम बहुमान होता है उसको परम भक्ति कहने में आती है, परम भक्ति उत्पन्न होती है। यथार्थ प्रयोग की क्रिया और यथार्थ भक्ति का मूल, दोनों का मूल यथार्थ समझ में रहा है। इस प्रकार से मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञान क्रिया और भक्ति का मेल होता है, तो आगे जाकर के वो समकित को प्राप्त करता है। अगर तीन में से एक में भी गड़बड़ हुई तो ये मार्ग का पता लगने वाला नहीं है। अब कृपालु देव के पत्र का शेष अंश है वो ले रहे हैं। कुछ एक महात्मा को बाद करके बहुत विचारवान जीवों ने भक्ति मार्ग का यही कारण से आश्रय किया है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पढ़ने का स्थान बहुत है, क्रिया मार्ग में भी पढ़ने का स्थान बहुत है, जबकि भक्ति में इस प्रकार का जोखिम कम है, जोखिम कम है, इसलिए जो विचारवान जीव है उन्होंने उसको प्रिफर किया है, उसको पहले पसंद किया है कि हम शुरू से ही भक्ति में आ जाएं। यही कारण से ऐसा किया। कुछ एक महात्मा, मैंने तीर्थंकर आदि कोई पूर्व के आराधक होते हैं उसकी बात अलग होते हैं, और सामान्य मुमुक्षु ने तो उसका आज्ञा आश्रित पना, उसकी आज्ञा में रहना, आज्ञा विरुद्ध कभी तनिक भी थोड़ा भी नहीं जाना, अथवा परम पुरुष सदगुरु के सदगुरु में सर्वार्पण स्वाधीनपण शीर्षा वंद्य दिखा देखा है, और ऐसे ही वर्ते हैं कि अगर सत्पुरुष मिले तो सर्वार्पण स्वाधीनपण, टोटल सरेंडरशिप जिसको कहते हैं, ऐसी आज्ञा में जो आ जाता है उसको, उसकी आज्ञा को शीर्षा वंद्य माथे पे चढ़ाता है, ऐसा उन्होंने देखा है। देखा है मतलब स्वीकार किया है कि ऐसा होना चाहिए, हमारे परिणाम ऐसे होने चाहिए, और विलंब भी नहीं, और ऐसे वर्ता है सिरसावंद किया है और ऐसे व्रते भी है, हाँ तो उसमें सिर्फ माना है भक्ति करते उतनी बात नहीं है, उसकी आज्ञा को का अमलीकरण भी फौरन शीघ्र करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो भक्ति कैसे रही वो बताओ। अगर कोई जीव आज्ञा का अमलीकरण नहीं करता है तो दूसरा तो कुछ करता है तो उसकी भक्ति वहां ज्यादा है, ठीक। भक्ति में मुख्य बात क्या होती है? सर्वार्पण, ये भक्ति की मुख्य बात है। तो अमलीकरण नहीं करता है तो सर्वार्पण रहा कहां से? उनकी अर्पणता और जगह ज्यादा है, इसलिए वो आज्ञा को उठा नहीं सकता है। किस जगह ज्यादा है वो खुद को अवलोकन करके इसका निर्णय करना चाहिए। तथापि ऐसा प्रत्यक्ष योग प्राप्त होना चाहिए, वो कब बन सकता है? आज्ञा को अमलीकरण करे वो कब बन सकता है कि ऐसा योग मिले? तो योगी नहीं मिले तो ये बात है, वो प्रवृत्ति में आ सकती नहीं है। देखो यहाँ योग पर वजन दे दिया है, फिर भी ऐसा होना चाहिए, फिर भी तथापि करके ऐसा योग मिलना चाहिए। योग नहीं मिले तो क्या करेंगे? कोई अवसर ही नहीं है उनको तो भक्ति करने का। योग नहीं मिले तो योग के लिए लालायत होना चाहिए। योग वियोग में योग नहीं है तो वियोग है, तो वियोग में वो वियोग की वेदना आनी चाहिए। योग नहीं है तो वियोग है, वियोग में वेदना आती है। अगर वियोग लगता है तो, नहीं लगता है तो खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं, ये बात हो जाती है। नहीं तो चिंतामणि जैसा जिसका एक समय है, ऐसा जो ये मनुष्य देह या मनुष्य भाव के जिसका एक समय भी चिंतामणि के मूल्य से भी अधिक है, यह उल्टा परिभ्रमण वृद्धि का हेतु हो जाता है, क्योंकि वो अन्य मार्ग को सन्मार्ग मानता है, करता है कुछ और, मान लेता है कि मैं मेरा आत्म कल्याण के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ये परिभ्रमण वृद्धि का हेतु हो जाता है। वो छह सौ ऐसी पत्र उस पर लिखा है कि वो चैत्र सु तेरस थी, भगवान महावीर की जन्म कल्याणक दिन था और लोग जय महावीर जय महावीर जय महावीर करके नारा लगाते थे बम्बई के जवेरी बाजार में। तो बहुत करुणा आई, कृपालु देव को बहुत करुणा आई कि अरे बेचारे, जो आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है उसको आत्म कल्याण का मार्ग मान करके परिभ्रमण की वृद्धि कर रहे हैं।
बहुत अच्छे शब्द में वो बात लिखी है, अच्छे तो कल्याण के मार्ग को और परमार्थ स्वरूप को यथार्थ रीति से नहीं समझने वाले अज्ञानी जीवों अपनी मति कल्पना से मोक्ष मार्ग को कल्पित करके विधविध उपाय में प्रवृत्ति करते हैं और वो प्रवृत्ति करते होने करने पर भी मोक्ष प्राप्त करने के बजाय संसार परिभ्रमण करते हैं, ऐसा जानकर निष्कारण करुणाशील ऐसा हमारा हृदय रोता है। हमारा हृदय तो ये बात देख करके रोने लगता है कि अरे अरे वो क्या कर रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, मानते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है और परिभ्रमण वृद्धि का हेतु तो होता है। तो बहुत करुणा से ये पत्र लिखा गया है। पत्र क्या, वो डायरी जो अपनी अंगत थी उसमें नोंद की है, वो चैत्र सु तेरस 1952 में। कितने साल हुए? 100 साल हुए, 99 साल हुए, 2051 चल रहा है ना,
1952 में 99 साल में ये लिखा हुआ। ठीक बात, दो अपनी पात्रता होनी चाहिए वो उपादान का विषय रहा और सत्पुरुष का योग हुआ निमित्त जरा हल्का सुंदर लगता है। हाँ है तो निमित्त लेकिन थोड़ा डिग्रेड लगता है कि भगवान को डिग्रेड क्यों करें, निमित्त कह करके उनको डिग्रेड क्यों करें। वही हमारा जो सर्वस्व है तो उसको निमित्त कह करके उतनी दूरी क्यों रखें, वो बात है। हाँ ठीक है, इतनी दूरी हमें ऐक्य भाव में रखना नहीं है, उपादान भी वही है और सर्वस्व भी वही है।
सत्पुरुष और ज्ञानी तो एक ही हुए, दो कैसे हुए?
हाँ जी,
सत्पुरुष और ज्ञानी एक ही हुए, दो क्या हुए?
हाँ
अभी दो की बात है कि सत्पुरुष और ज्ञानी
पात्रता तो अपनी योग्यता है और सत्पुरुष का संयोग है, तो संयोग को निमित्त कहने में आता है, लेकिन यहाँ इसके प्रति का जो बहुमान है, भक्ति है, परम भक्ति है, उसमें उसको निमित्त क्यों कहें, ये तो सर्वस्व है। लेते हैं हाँ, वो अंतरंग कारण लेते हैं, अंतरंग निमित्त नहीं अंतरंग कारण बोले हैं, नियम सार में वो बात है। तो आया आपने प्रवचन नवनी दूसरे भाग में वो बात है पढ़ा ना, अंतरंग कारण बोले हैं पद्म ब्रह्म मल्लारी देव, कुंदकुंदाचार्य ने भी वही लिखा है। ये 693 पुत्र यहाँ समाप्त तो होता है। कौन है? हाँ हाँ उनको पूर्वभूम में तो है ही, एक वो स्टेज में से पास हुए बिना कोई काम नहीं होने वाला, ये तो है ही, तीनों काल एक ही मार्ग है। इसलिए तो उस 194 में उसका वजन आया है, जो कृपालु देव का 194 पत्र है उसमें बहुत वजन दिया है। भाव अप्रतिबद्धता से निरंतर विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद, उसके प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आए बिना किसी को सत्स्वरूप की मैंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती नहीं, और आने से अवश्य वह मुमुक्षु जिसका चरणारविंद की सेवा की है उसकी दशा को, ज्ञान के दशा को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग सर्व ज्ञानियों ने सेवन किया है, सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे कम संख्या मनुष्य की होती है, चार गति में, इससे ज्यादा मार्ग ज्ञानी नहीं मिले थे, इसलिए भूतकाल की बात कर दी कि हमको भी ज्ञान प्राप्ति इस तरह ही हुई है, इससे ही हुई है, वर्तमान से यही मार्ग से होती है, अनागत में नहीं भावी काल में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है, और सर्व शास्त्र का बोध लक्ष्य क्या, बोध लक्ष्य मैंने क्या मोटिव कहने का इंटेंशन, सर्वशास्त्र का जो बोध लक्ष्य है वो देखते हैं, देखने को जाते हैं तो यही देखने में आता है। देखो सभी शास्त्र का क्रम निकाला है उन्होंने, बहुत शास्त्र का अवगाहन है, और कोई भी प्राणी
संसार से मुक्त होना चाहता है, इच्छता है, उसको अखंड वृत्ति से यही मार्ग का आराधन करना है। यही मार्ग का आराधन किए बिना जीव ने अनादि काल से परिभ्रमण किया है। देखो कितना वजन है इस बात का, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा मार्ग ऐसा कहते हैं। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही किया है, कोई एक भी बाकी नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो तो आया ना, फिर भी योग होना चाहिए, वो तो आया, बिना किसके करेंगे, वरना तो वियोग की वेदना आनी चाहिए। और वियोग की वेदना वो भी भक्ति है, क्या है वियोग की वेदना, वो भी भक्ति का स्वरूप है, और ये यथार्थ भक्ति का स्वरूप है, और वो निर्मलता को लाता है, अवश्य लाता है निर्मलता को। फिर भी निष्काम रूप से होना चाहिए, या कहीं भी इसके एक वचन को भी प्रतिकूल जाने का हमारा अभिप्राय या परिणमन होना चाहिए नहीं, तब। वरना भक्ति तो विरह वेदना वाले भी दिखते हैं और निर्मलता नहीं आती हुई भी दिखते हैं, दो प्रकार भी दिखते हैं, ऐसा भी बनता है। तो क्या होता है कि कुछ बात से हम सम्मत नहीं हो, कोई ऐसी भी बात होती है जो हमारे पूर्व ग्रह के साथ, मिथ्या आग्रह के साथ मेल नहीं खाती है, और हम इस मिथ्या आग्रह छोड़ नहीं सकते, पूर्व ग्रह हमारा मिटता नहीं, ये जब परिस्थिति होती है तो कितनी भी भक्ति दिखे निर्मलता नहीं लाएगी वो भक्ति। इसलिए ये एक मीटर है कि भक्ति है तो निर्मलता आई, यथार्थ है तो भक्ति है, निर्मलता नहीं आई तो यथार्थ नहीं है, ये इसका मीटर है। आई गई, आनी ही चाहिए निर्मलता, ये लाती है यथार्थ भक्ति तो निर्मलता लाती है। और कितने भी शास्त्र पढ़े और ज्ञानार्जन करे, जो निर्मलता नहीं आती है वो ऐसी भक्ति से, निष्काम भक्ति से सहज मात्र में आती है। इसलिए लिखा कि बहुत विचारवान जीवों ने तो भक्ति मार्ग का आश्रय किया है, यही कारण से ज्ञान मार्ग में नहीं गए, क्रिया मार्ग में नहीं गए, भक्ति मार्ग में चले गए, तो इसका विचारवान पना है, वो उसकी सूझ है इस विषय में।
कल जो श्रीमद जी का पत्र लिया था सुभाष भाई के ऊपर, समझ नाम आपको हुआ है और आगे की दशा क्यों नहीं दिखाई दी?
हाँ, 247 में 247 में ये बात है।
उसमें क्या भक्ति का कुछ
कमी? भक्ति तो बहुत थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कभी सकामता भी आया करती थी, तो इसलिए वो आगे की दशा को प्राप्त नहीं होते थे। 247 में कल ही रात्रि को लिया था, फिर से ले ले, क्या शब्द में है? आप जैसे को सम्यक ज्ञान के बीज की और पराभक्ति के मूल की प्राप्ति हुई है, मैंने हमको आपने पहचान लिया है, फिर भी इसके बाद का भेद क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? स्वरूप का भाव भाषण क्यों, पहला संकेत तो हुआ आपको, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है? पहले वाले को दूसरा आना ही चाहिए और आता ही है, विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न उठाया है। इसका कोई कारण समझ में आता हो तो लिखना, क्या जिम्मेवारी डाली है, इसका कारण कोई समझ में आता हो तो लिखना। मैंने अंतर गवेषणा करना कि क्या गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ रहेगी, आगे नहीं बढ़ रहे हो,
जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो मूल की प्राप्ति हुई थी और उतनी पात्रता थी कि कृपालु देव के समीप में सबसे जो उत्कृष्ट पात्र थे वो सुभाग भाई थे। तो उन्होंने प्रॉमिस भी दिया है कि हम आपको इसी भव में ज्ञान प्राप्ति कराएंगे। तो कौन सा पत्र है ज्ञान प्राप्ति वाला, मालूम है? 293 नंबर का पत्र है। कैसी योग्यता होगी कि वचन दे दिया, 24 के साल में ही वचन दे दिया है। विरह की वेदना हमको ज्यादा है, क्या संबोधन किया है? श्री सुभाग्य स्वमूर्ति रूप श्री सुभाग्य, क्या लिखा है? दोनों के बीच में अंतर नहीं रखा, स्वमूर्ति रूप। वो तो आप तो हमारी मूर्त है, हम आपके बीच में कोई अंतर नहीं रखते। विरह की वेदना हमको ज्यादा रहती है क्योंकि वितरकता भी विशेष है ना हमारे में, आपको भी विरह की वेदना है हम जानते हैं, लेकिन हमको ज्यादा है, ठीक? क्योंकि विरह की वितरकता हमारे में ज्यादा है तो विरह की वेदना भी ज्यादा है। अन्य संघ में उदासीनता है, 293 पत्रांक नहीं होना चाहिए, 293 पेज नंबर है, पेज नंबर 293 लेना, उसमें नहीं आया। दो सौ त्राणु पेज में आगे लिखते हैं, ज्ञान धारा संबंधी मूल मार्ग मैंने मोक्ष मार्ग हम आपको इस समय में समागम में थोड़ा भी कहेंगे, और यह मार्ग पूरी रीति से यही जन्म में मैंने यही भाव में आपको कहेंगे। ऐसी हमको हरि की प्रेरणा है ऐसा लगता है, मैंने हमारे आत्मा की ये प्रेरणा हमको ये बुलाती है लिखाती है। आपने हमको हमारी इच्छा का सुख दिया है, इसके लिए नमस्कार के सिवा दूसरा बदला कैसे बदला दे आप दे सकें? नमस्कार कर सकते हैं, दूसरा बदला तो क्या दे रहे हैं? इतना सुख आपने दिया है, देखो सौभाग्य भाई ने कृपालु देव को सुख दिया था और इसके बदले में वो उनको नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार के सिवा क्या कर सकते हैं? इसके सिवा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ ऐसा होता है, देखो ऐसा हुआ है, ये तो जीवन दृष्टांत है। परंतु हमको लगता है वो किस प्रकार का सुख होगा कि वो सत्संग चाहते थे और वो सत्संग देते थे उनको, इनका संग चाहते थे और देते थे उनको, और तो कोई निष्कामता थी, कोई चीज वस्ती की तो जरूरत नहीं थी। वो इसका ऐसे पात्रता होती है कि इनका संग वो चाहते थे, और उसमें तो लिखा 269 में कि हमको आपका समागम चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, आपका समागम चाहिए।
बार बार चाहते थे।
परंतु हमको लगता है कि हमारे हाथ से हरि मैंने भगवान आपको पराभक्ति दिलाएगा, हमारे हाथ से दिलाएगा, और हरि के स्वरूप का मैंने आत्मस्वरूप का ज्ञान भी कराएगा, और यही हम हमारे बड़ा भाग्य का उदय मानेंगे। क्या हमारे कारण से आपको आत्मज्ञान होगा, यही हमारा भाग्य उदय मानेंगे हम। क्या शैली है, है?
हमारा चित्त तो बहुत हरिमय रहता है, मैंने आत्मामय चित्त रहता है, फिर भी संग सब कलयुग का रहा है, और संग तो सब कलयुग का रहा है, कहीं भी संग करने का हमारा मन नहीं चाहता है। उस तरह से ये 259 पत्र में वो प्रॉमिस दिया है कि हम अवश्य आपको ज्ञान प्राप्ति कराएंगे, इस भव में ही कराएंगे।
मोक्ष स्वभाव भाई के समागम में मोक्ष से भी ज्यादा सुख माना, क्या बात है, क्या रहस्य है?
ये सत्संग, सत्संग का किस प्रकार का अनुभव होगा ये देखना है, कि इस प्रकार का सत्संग कैसा चलता होगा आपस में, कि जिस सत्संग में मोक्ष को भी भूल जाए या गौण हो जाए, ये सत्संग कैसा होता हुआ होता होगा, ये कल्पनातीत विषय हो जाता है। ऐसी दशा में जो आते हैं वो अनुभव करते हैं इसका। गुजराती में अपने एम कि ये दशा में आवे छे, ए प्रसंग ने माने छे, वो प्रसंग का वो अनुभव करता है, माने माने छे, ऐसी एक परिस्थिति होती भी है। यहाँ तक समय